अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के प्रश्न उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। सुकेशा आदि छह ऋषि आचार्य पिपलाद जी के आश्रम में ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के गए हैं। आचार्य पिपलाद जी की आज्ञा के अनुसार एक वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा रूपी साधनों को परिपुष्ट करने के लिए निवास करने के बाद कबंधी नाम के ऋषि ने अपर विद्या के फल विषयक प्रथम प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यह सारी प्रजा जो अपर विद्या का फल है वह कहां से उत्पन्न होती है? तो बताया अन्न रूप प्रजापति से। जब कबंधी के प्रश्न का उत्तर मिल गया उसके बाद भार्गव वैदर भी ऋषि आचार्य पिपलाद जी से अनुमति लेकर के प्रश्न करते हैं। वो है द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न में उन्होंने अवांतर तीन प्रश्न किए। ये अन्न रूप प्रजापति से निष्पन्न हुई शरीर रूप जो प्रजा है, इस प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं? पहला प्रश्न कि भगवान कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, कि ये शरीर को धारण करने वाले देव कितने हैं जिनके रहने से शरीर की स्थिति होती है, वे कौन है? और शरीर को धारण करने वाले में से कौन कौन है जो ये शरीर धारण रूप अपने कार्य का लोगों को ज्ञान हो जाए इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं ही अपने महात्म्य का कार्य का प्रचार करने वाले कौन है? कतरे एतत् प्रकाशयन्ते से प्रश्न पूछा। और इनमें श्रेष्ठ कौन है? कह पुनः येषां वरिष्ठ। येषां का अर्थ है यह जो प्रजा का धारण करने वाले हैं इन्हीं में से कोई एक होगा प्रधान, वो कौन है? ये भार्गव के आचार्य पिपलाद जी के प्रति प्रश्न हुए तीन अवांतर प्रश्न, तीनों का मिलकर के एक प्रश्न माना जाता है। ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से अपरा विद्या का जो उपासना रूप अंश है उसे स्पष्ट किया जाएगा। प्राण उपासना यहां पर उदाहरण के रूप में बताई जा रही है। और उपासना में उपास्य माना जाएगा प्राण। उपासना कहा जाता है उपास्य के गुणों के चिंतन को। तो उपास्य प्राण के गुणों का चिंतन, यह प्राण की उपासना मानी जाएगी। इसके लिए प्राण में कुछ गुणों का वर्णन करना जरूरी है। तो भार्गव के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी उपास्य प्राण के गुणों का वर्णन करेंगे। गुण बताएंगे कि उपास्य प्राण में यह यह गुण है, इनका चिंतन करने से प्राण उपासना बनेगी। और फिर वो तीसरा प्रश्न आएगा, वहां उपासना का स्वरूप तथा उपासना का विधान और फल बताया जाएगा। इसके लिए तीसरा प्रश्न है। तो दूसरा और तीसरा इन तीन दो प्रश्नों से उपासना का पूरा पूरा विधान होगा। तो ये जो द्वितीय प्रश्न रूप प्रकरण है, इसमें प्रथम जो वाक्य हुआ ये एक भार्गव का प्रश्न रूप वाक्य है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय कंडिका रूप वाक्य है। आचार्य पिप्पलाद जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि तस्मै सहो वाच आकाशो हवा एष देवो वायुरग्नि रापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रञ्च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयाम। तो यहां इस द्वितीय कंडिका रूप वाक्य में भार्गव के दो प्रश्नों का उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि कितने देव प्रजा का विधारण करते हैं। ये पहला प्रश्न, इसका भी उत्तर है इसमें। और दूसरा प्रश्न कतर एतत प्रकाशयन्ते, इसका भी उत्तर है। दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स ह वाच तस्मै, यह श्रुति वाक्य है। तो श्रुति कह रही है कि तस्मै यानी प्रश्नकर्ता भार्गव को, स यानि आचार्य पिप्पलाद जी ने, वाच यानि कहा, आचार्य पिप्पलाद जी ने भार्गव के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो उत्तर है पहले प्रश्न का, आकाशो हवा एष देव वायु अग्नि आपह पृथ्वी। प्रजा शब्द का अर्थ है जिसका धारण किया जा रहा है, वह शरीर है, स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर के विधारणकर्ताओं को बताना है। तो कार्य का विधारणकर्ता है कारण, कार्य को धारित करके रखता है कारण। तंतु कारण है, वस्त्र कार्य है। तो वस्त्र तंतुओं से बना है, तंतुओं में ही स्थित होता है। इसलिए माना जाता है कि कार्य का वस्त्र रूप कार्य का विधारयिता, उसका उपादान कारण भूत जो तंतुएं हैं वे हैं। यदि तंतुओं को हटा दिया जाए तो वस्त्र नहीं रह सकता। ऐसे ये स्थूल भूत स्थूल शरीर के उपादान कारण है। तंतु जैसे उपादान कारण है वस्त्र के, वस्त्र है उपादेय यानि कार्य किसका? तंतुओं का। ऐसे ये 84 लाख प्रकार के शरीर जिसे प्रजा कहा गया, ये है कार्य वस्त्र स्थानीय, और तंतु स्थानीय है ये पांचों भूत। उन्हें यहां पर आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी शब्द से कहा जा रहा है। लेकिन ये पांचों भूत कौन से? जो हम चलते हैं तो रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी, रूप पृथ्वी, और कहीं पर पानी है तो वो पानी, और अग्नि और वायु, ऐसा जहां कहीं का उठा करके मिलाने से ये 84 लाख प्रकार के शरीर नहीं बनते हैं। स्थूल शरीर का ही कुछ सूक्ष्म अंश जिससे ये स्थूल शरीर बनते हैं, लेकिन वह स्थूल शरीरों का उपादान कारणभूत स्थूल भूतों का वह सूक्ष्म अंश सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो भी एक प्रकार से तत्व है। प्रत्येक जीव का अपना अपना, जैसे सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबका मन अलग है, सबके प्राण अलग हैं, सबकी ज्ञान इंद्रियां अलग हैं, कर्मेन्द्रियां अलग हैं, वेष्टि इन 17ों का समुदाय माना जाता है एक वेष्टि सूक्ष्म शरीर। वह जैसे प्रत्येक जीव का अलग अलग है, ऐसे प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर भी अलग अलग है, और ये स्थूल शरीर के उपादान कारण भी हैं सबके ये स्थूल भूत ही, लेकिन उन स्थूल भूतों के अंश अलग अलग हैं। जैसे आप पंचकृत पंच महाभूतों से ही सूक्ष्म शरीर बना है, वह सूक्ष्म शरीर सबके अलग अलग हैं, ऐसे स्थूल शरीर के उपादान कारण प्रत्येक जीव के भूत सूक्ष्म अलग अलग हैं, और उन भूत सूक्ष्मों को सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म ये अलग अलग दो शब्द हैं। वर्ण तो दोनों में उतने ही हैं, भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर इतना ही है कि सूक्ष्म शब्द पहले प्रयोग में लाते हैं, भूत शब्द का बाद में प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म शब्द पूर्व में, भूत शब्द बाद में रखेंगे, तो सूक्ष्म शब्द सूक्ष्म भूत ये शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा अपंचकृत पंचमहाभूत, जो सूक्ष्म भूत है, पंच तन्मात्राएं जिनको कहा जाता है, शब्दादि पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत अपंचकृत पंचमहाभूत ये पर्यायवाचक शब्द है। वो स्थूल शरीर का उपादान कारण नहीं है। स्थूल शरीर का उपादान कारण को बताने वाला शब्द है, वहां भूत शब्द पहले है, सूक्ष्म शब्द बाद में है। भूत सूक्ष्म कहते हैं तो स्थूल भूतों का ही वह सूक्ष्म अंश जिससे यह 84 लाख प्रकार का शरीर निर्माण होता है, स्थूल शरीर का उपादान कारण को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग होगा उसमें भूत पहले रहेगा, सूक्ष्म शब्द बाद में रहेगा। भूत सूक्ष्म ये स्थूल शरीर का उपादान कारण, वह भी प्रत्येक का अलग अलग है। हाँ, पंचकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्म अंश, सभी पंचकृत पंच महाभूतों को यानी स्थूल भूतों को भूत सूक्ष्म नहीं कहा जाएगा, उनमें से जितना अंश स्थूल शरीर का उपादान कारण बनता है उतना अंश, और वह प्रत्येक जीव के साथ सृष्टि के प्रारंभ में ही जैसे सूक्ष्म शरीर ईश्वर बना करके दे देता है, वो हमेशा वही रहता है, फिर तत्व है ना। स्थूल शरीर तो बदलता जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है। जब इस शरीर को छोड़ करके जीव चला जाता है दूसरा शरीर धारण करने के लिए, तो सूक्ष्म शरीर को साथ में ले जाता है। इसे 15वें अध्याय में कहा है ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान इवाश्यात। तो ये अपने अपने गोलकों में स्थित सारी इंद्रिया उनको निकाल करके गोलकों में से इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जब जाती है तो साथ में ले जाती है, दूसरे शरीर में जीव के साथ ही जाती है। ऐसे भूत सूक्ष्म भी, जैसे सूक्ष्म शरीर के सारे तत्व तो साथ में जाते हैं, ऐसे भूत सूक्ष्म भी साथ में ही चला जाता है। वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, ऐसे ब्रह्म सूत्र में निर्धारण हुआ है। ये कहा गया कि स्थूल भूत तो सभी जगह उपलब्ध है, तो जहां उसे जाना है वहीं के पृथ्वी पानी और अग्नि वायु आकाश को लेकर के शरीर बन जाएगा। तो साधारण सा घड़ा भी बनाना होगा तो जिस किसी मिट्टी से नहीं बनता, कुम्हार को देखना पड़ता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, उस मिट्टी को ही ला करके वो घड़ा बनाता है, भले ही दूर में हो, नहीं तो उसके आंगन के सामने रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी उससे थोड़ी घड़ा बना पाएगा, नहीं बना पाता। तो ऐसे ये सारे स्थूल शरीर भूत स्थूल भूत सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी सभी भूत सूक्ष्मों के अंश से नहीं बनते, कुछ विशेष अंश होते हैं, वह भी सूक्ष्म शरीर के तरह भूत सूक्ष्म साथ में चले जाते हैं जीवात्मा के, फिर वहां वह शरीर का रूप धारण करते हैं। उनको यहां पर आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी शब्द से लेना, ये आकाश आदि पांच महाभूतों का वाचक, जो आकाश आदि पांच पदों का प्रयोग है, वह पांचों पद यानी शब्द मिलकर के बता रहे हैं भूत सूक्ष्म को, जो स्थूल शरीर का उपादान कारण होता है। वही स्थूल शरीर को बना करके स्थूल शरीर को धारण करके रखते हैं, जैसे तंतु वस्त्र को उत्पन्न करके जब तक वस्त्र हैं तब तक अपने में धारित करके रखते हैं, ऐसे भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर को बना करके स्थूल शरीर को धारण करते हैं। ये दिखाने के लिए बन जाते हैं स्वयं ही शरीर के रूप में बन जाते हैं, हाँ तो मरण के बाद चले जाते हैं। ये जो स्थूल शरीर है ना, इसमें दो अंश हैं, कुछ अंश हैं, जैसे भवन के दो अंश होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चर और एक होता है फिर सीमेंट बजड़ी आदि से प्लास्टर आदि करके बना हुआ ऊपर का रूप। ऐसे शरीर में भी दो अंश हैं, एक स्ट्रक्चर है वो भूत सूक्ष्म है, तो स्ट्रक्चर मात्र निकाल लिया और बाकी सब रखा, ऐसा हो सकता है ना? होता है, वो सार है शरीर का, भूत सूक्ष्म जो है सार है, तो वो सार सार निकल आता है, जैसे बादाम का तेल निकालते हैं, इलायची का तेल निकालते हैं ना, तो छिलके में से दाने निकाल करके पीस करके उसका तेल निकालते हैं, या छिलके के अंदर दाने वैसे ही होते हैं इलायची के, दाने ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब इलायची आपके सामने खाने के लिए मुखवास के रूप में आती है भोजन के बाद, तो जिन दानों से तेल निकला हुआ है छिलकों में से उन दानों को निकाल करके देखो, और जो तेल निकाले बिना रखी हुई इलायची है वो छिलके में से दाने निकाल करके देखो तो आंख से ही दोनों का आकार प्रकार बिल्कुल अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता। वो उसमें तेल आंख से भी दिखता है जिसमें से तेल नहीं निकाला, और जिसमें से तेल निकाला बिल्कुल सफेद से दिखता है, और उनको खाओ तब भी चौथा चौथा जैसा कोई स्वाद नहीं होता। और जिनका तेल नहीं निकाला है इलायची के दानों का, वो मुख में डालते हैं तो वो जो है खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, उसका आकार भी आंख से भी अलग प्रकार से दिखते हैं वे दाने, काले काले अच्छी तरह से, और उसमें तेल दिखता भी है, तेज दिखता है उनके अंदर, और वो निस्तेज दिखते हैं सफेद से। ये दोनों का अंतर है ना, लेकिन ऊपर से इलायची का छिलका भी वैसा ही रहता है, अंदर दाने भी वैसे ही रहते हैं, सब कुछ वैसा ही रहता है, और उसका सार निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता। ऐसे कपित्थ नाम का फल होता है जिसे कैथ कहते हैं, गणेश जी को बहुत प्रिय है ना, कपित्थ चारु फल चारु भक्षणम, गणेश जी का एक विशेषण आता है। जिस जंगल में हाथी बहुत रहते हैं उस जंगल में एक कैथ के पेड़ बहुत होते हैं, जहां कैथ के पेड़ होते हैं वहीं हाथी रहते हैं, क्योंकि उनका आहार है वो, और वो कैथ वो खाते हैं तो चबा करके नहीं खाते, सीधे वो निगल लेते हैं, जैसे टैबलेट निगल लेते हैं कि चबा करके खा लेते हैं, चबा करके खा नहीं सके कड़वी लगेगी, वो पानी के साथ निगल लेते हैं ना हम लोग, ऐसे वो जो है कपित्थ के फल निगल लेते हैं हाथी, और निगलने के बाद उसमें जो गरी होती है अंदर, जैसे नारियल के अंदर गरी होती है ना, ऊपर छिलका होता है, तो ऐसे वो अंदर की गरी तो हाथी के पेट के अंदर प्राकृतिक ऐसी कुछ शक्ति है कि उसको क्रैक किए बिना उस छिल के ऊपर के कवच को वो क्रैक भी नहीं होता, थोड़ा भी उसमें क्रैक भी नहीं आता, न तो कोई छेद होता है, और अंदर की गरी गरी वो खा लेता है, पच जाती है उसके अंदर, और कवच वैसा ही रहता है, कम से कम थोड़ा बहुत कहीं क्रैक होता तो उसमें से निकल गई माना जाता वो पिघल करके, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और जब वो शौच करेगा तो शौच के माध्यम से वो ऊपर का जो छिलके का कवच होता है ना वो निकल आता है, और पेड़ से तोड़ा हुआ वो कैथ का फल और हाथी के शौच से निकल करके समझ लो अलग हो गया, वो जो फल है दोनों को ऊपर से देखोगे आप तो एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि दोनों में वो छिलका ऊपर का वैसा ही है, कोई छेद नहीं, क्रैक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाथ में उठा करके देखोगे तो ये बिल्कुल हल्का लगेगा, और वो गरी जिसके अंदर है वो भारी लगेगा, तोड़ करके देखोगे तो और भी दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल गरी मिलेगी नहीं, जिसके अंदर गरी गरी मिलेगी। तो वो गरी गरी जैसे हाथी ने निकाल ली और ऊपर का कवच जैसा का तैसा छोड़ दिया ना, ऐसे ही ये आप भी अभी तक जितने शरीर छोड़ते हुए आए हैं ना, उन सब शरीरों में से गरी गरी को निकाल लिया, सार को, जैसे इलायची के उस तेल को निकाल लिया तेल निकालने वाले ने, बाकी सुखा करके बाजार में भेज दी, दिखती तो दोनों एक जैसी हैं ऊपर से, ऐसे भी दिखती भी नहीं, एक तो हरी हरी लगती है अच्छी, तेज युक्त भी दिख रहा है छिलका भी, और जिसकी वो निकाला है वो वाइट होता है। ऐसे जीवित शरीर में और मृत शरीर में आंख से देखने पर भी कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता? कुछ अंतर नहीं दिखता, इसका अर्थ देखा ही नहीं मुर्दा आपने, मुर्दा नहीं देखा अभी तक, ये वैसे ही नहीं रहता है, निस्तेज हो जाता है। मुर्दे को देखो, सोते हुए आदमी को देखो और मुर्दे को देखो, उसमें भी एक सोते हुए में चेतना रहती है, तेज रहता है, वो बिल्कुल जो है तेजस्वी लगेगा और चेतना हीन दिखेगा, बिल्कुल तेज हीन दिखेगा मुर्दा। दोनों में अंतर हो, तेल निकल गया, जैसे वो इलायची अलग अलग दिखती है, ऐसे ये भी दिखने में भी जिसका भूत सूक्ष्म निकल गया, वो सार है भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर का, उसी से स्थूल शरीर बना था, उसी में टिका था, और वो जब निकल जाता है जीवात्मा के साथ, तो आप जब तक वो भूत सूक्ष्म रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, हजारों साल तक शरीर बना रहेगा। और ये निकल जाए, और मान लो कभी किसी की अंत्येष्टि नहीं हो पाई, कहीं एकांत स्थान में जंगल में छूट गया शरीर, लेकिन वो बना नहीं रहता, धीरे 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 धीरे, जैसे कपूर हवा में उड़ जाता है ना, ऐसे वो मृत शरीर समाप्त हो जाएगा। कुछ सालों बाद हड्डियां भी समाप्त हो जाती है, और यदि भूत सूक्ष्म रहता है उसके अंदर और सूक्ष्म शरीर रहता है, तो स्थूल शरीर हजारों साल भी रह सकता है। ये है इनके सार भूत, इसको धारण करने वाले। और ये चले जाए तो फिर वो निकल जाता है, ढह जाता है, जैसे खम्भों को कोई हटा दे तो छत गिर जाता है, ऐसे ये भी समाप्त हो जाता है। तो वो कपित्थ फल के अंदर का जो गरी जैसा सार, वो इस स्थूल शरीर का वो सार है। और ये ऊपर का जो मुर्दा के रूप में दिखता है, वो एक प्रकार से ऊपर से आपने ईंटें और सीमेंट प्लास्टर आदि करके और पुट्टी आदि करके लगाया हुआ माल है, वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, निस्तेज है। वो खाए हुए अन्न से और माता पिता के सप्तम धातुओं से बना हुआ जो होता है अंश, उतना वो रह जाता है, और सार सार तो उस जीवात्मा के साथ चला जाता है। वही तो ये है भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर का बीज, उन्हें कहा जाता है यहां पर आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी शब्द से कहा जा रहा है उनको। लेकिन ये जड़ हैं, और इन जड़ों में आगे कुछ बताया जा रहा है कि विवाद हो रहा है अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते समय अपनी अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए ये कहते हैं कि ये सारा जीवन भर शरीर को धारण करके रखना रूप कार्य मैं ही करता हूं, ऐसा अभिमान करते हैं एक एक जन। ये विवाद करना अपने और अभिमान करना, ये जड़ का काम है कि चेतन का? जड़ नहीं कर सकता, चेतन कर सकता है, इसलिए मानना पड़ेगा कि वो चेतन है कोई। इसलिए यहां देव शब्द का भी प्रयोग किया है, आकाशो हवा एश देवो, तो इसलिए इनसे लेना इनके अभिमानी देवता, देव शब्द का प्रयोग होने से। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनके अभिमानी देव, ये ऐसा अर्थ समझना। स्थूल शरीर के बीज भूत भूत सूक्ष्म के अभिमानी देव इस स्थूल शरीर को धारण करके रखते हैं, ये अर्थ निकलेगा। और खाली इतने ही हैं भूत सूक्ष्म ही कि और भी है? तो कहते इंद्रिया भी, इसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर भी न हो तब भी नहीं रह पाएगा, ये आपस में दोनों मिलकर के स्थूल शरीर को धारण करके रखते हैं स्थिति काल में, सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्म। इसलिए आगे ये लिखते हैं वांग मनः चक्षुः श्रोत्रं च, तो वाक शब्द ये उपलक्षण है सभी कर्म इंद्रियों का, मन उपलक्षण है प्राण और बुद्धि का, चक्षु और श्रोत्र ये दोनों शब्द उपलक्षण है बाकी ज्ञान इंद्रिय के। उपलक्षण कहा जाता है जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ अपने अर्थ को बताते हुए दूसरे शब्दों के अर्थ को भी बता दें, उसे कहा जाता है उपलक्षण। तो जैसे वाक शब्द है, यहां पर यह अपना जो अर्थ है वाक शब्द का, वाग इंद्रिय उसको तो बता ही रहा है, और बाकी चार शब्द जो हस्त पाद पायु उपस्थ, इन शब्दों के अर्थ है बाकी चार कर्म इंद्रिया, बाकी चार शब्दों के अर्थ है। उन चार शब्दों का यहां पर प्रयोग नहीं है, हस्त पाद आदि कर्म इंद्रियों को बताने वाले हस्त पाद आदि शब्दों का प्रयोग नहीं है, लेकिन उनके अर्थ को भी बता रहा है वाक शब्द ही, अपने अर्थ को भी बता रहा है और हस्त पाद आदि शब्दों के अर्थ को भी बता रहा है, इसलिए इसे उपलक्षण कहते हैं। शब्द वह शब्द उपलक्षण कहलाता है जो अपने अर्थ को बताते हुए अन्य शब्दों के अर्थ को भी बताता है, वह उपलक्षण कहलाता है। तो यहां तो खाली कर्मेंद्रिय का वाचक एक ही शब्द है वाक शब्द, और कर्मेंद्रिया है पांच, और पांचों कर्मेंद्रियों को बता रहा है अकेला वाक शब्द, इसलिए यह हुआ उपलक्षण। ऐसे एक मन शब्द है और बुद्धि शब्द के अर्थ को भी बता रहा है, प्राण शब्द के अर्थ को भी बता रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा उन दोनों का उपलक्षण। और यहां चक्षु और श्रोत्र शब्द है, ये अपने अर्थों को बताते हुए बाकी जो अनुक्त तीन इंद्रियां हैं घ्राण रसन त्वक, उनको भी बता रहे हैं, बाकी तीन शब्दों के अर्थों को भी ये दो शब्द बता रहे हैं, इसलिए उपलक्षण है। तो अर्थ निकला पूरा सूक्ष्म शरीर भी, ये सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व भी क्या करते हैं कि शरीर को भी धारित करके रखते हैं, विशेष रूप से धारित करके रखते हैं, खड़ा है तो खड़े रहने देते हैं, गिरने नहीं देते, और ये किसी के खड़े ही खड़े अंतिम श्वास निकल जाए तो फिर वो खड़ा ही रहेगा कि वो तुरंत गिर जाएगा, वो खड़े खड़े उसके शरीर में से ये भूत सूक्ष्म निकल गया, सूक्ष्म शरीर निकल गया, वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाता है, बैठा है तो बैठा ही नहीं रहता, बैठे बैठे ही लेट जाता है, गिर जाता है। का मतलब बैठा हुआ है तो बैठे रखना, जब तक बैठना है तब तक, खड़ा है तो खड़े रखना, चलना है तो चलाए रखना, ये है शरीर का विधारण करना। और ये विधारण कौन करते हैं, ये पूछा था कि कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, ये कितने देव हैं जो इस शरीर को धारण करके रखता है, तो कितने देव बताए, भूत सूक्ष्म पांच वो है, और सूक्ष्म शरीर अंतपाती ये सत्रह, पांच और सत्रह बाईस, ये हैं इस शरीर को धारण करके रखने वाले देव। ये जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक यह शरीर बना रहता है, और ये बाईस निकल जाए शरीर में से तो शरीर फिर समाप्त हो जाता। तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ भार्गव के। तो द्वितीय प्रश्न है कि शरीर को धारण करने वाले जो ये 22 देवता हैं, इनमें से कौन कौन शरीर को विधारण करना रूप अपने कार्य का खूब प्रचार प्रसार करते हैं, इसे गोपनीय नहीं रहने देते, छिपा करके नहीं रख सकते, चाहते हैं कि लोगों को मालूम पड़े कि हम ये करते हैं ये करते हैं। ऐसा कौन कौन करते हैं, ये दूसरा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम। तो ते यानि ये जो 22 बताए हैं, इन 22 में से 5 को हटा दीजिए तो कितने रहेंगे, 17। तो ये 17 जो हैं ते शब्द से लीजिए, वो 5 कौन, 5 नहीं नहीं 5 प्राण मन शब्द से उपलक्षण विधया लिए गए जो पंच प्राण, उनको छोड़ दो। यद्यपि वो भी धारण करते हैं, इसलिए धारण करने वालों में तो उनको बता दिया गया, लेकिन वो उनको अपने काम पर विश्वास है। कई कई लोग ऐसे होते हैं उनको अपने काम पर विश्वास होता है, वे कहते हैं हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारा काम बोलेगा, हमको अपना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे काम से स्वयं ही प्रचार हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं काम में परफेक्ट, और कुछ होते हैं काम में कुछ कमी है तो उनको प्रचार ज्यादा करना पड़ता है। तो ये पंच प्राण ये भी शरीर के विधारक हैं, लेकिन जब प्रचार करने का समय आता है तो कहते हैं कि प्रचार में तो हम नहीं आएंगे, हमको समय नहीं है। यदि प्रचार करने में प्राण लग जाए और कहीं दूर दूर तक चले जाए इस शरीर से निकल करके, तो बाहर का बाहर ही रहेगा वो। इसलिए जो है बाकी इंद्रियों का तो ये चले भी जाए, ऐसा तो आता है ना बृहदारण्यक में और छांदोग्य में कि इनको अभिमान हुआ तो कहा कि एक एक साल की छुट्टी पर चले जाओ, और जिसके जाने पर भी इस शरीर का कोई काम न रुके तो समझना कि वो श्रेष्ठ नहीं है, और जिसके जाने से काम रुक जाए उसको श्रेष्ठ समझना। तो सभी निकलते हैं, लेकिन प्राण जब चाहता है कि अब सब एक एक जाकर के आ गए हो एक एक वर्ष की छुट्टी पर, तो अब मैं भी जाता हूं कुछ क्षणों की छुट्टी लेकर के, तो जाने की तैयारी ही करता है, तो इनको भी निकलना होता है। यहां पर भी अभी आएगा का मतलब प्राण शरीर को विधारण रूप जो कार्य है अपना करना, इस कार्य से छुट्टी लेकर के चला जाने की इच्छा भी करता है, तैयारी भी करता है खाली, तो ये शरीर गिरने लगता है, टिक नहीं सकता। तो प्राण इसलिए हमेशा विधारण तो करता रहता है, उसका कार्य बोलता है, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो द्वितीय प्रश्न के उत्तर में तो उसको तो हटा देना प्राण को, विधारण करने वाले तो 22 और उनमें से 5 प्रकार का प्राण को हटा देंगे तो 17, ये 17 लगते हैं ज्यादा प्रचार प्रसार करने में अपने काम का। उनको ते शब्द से लीजिए कि ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, प्रकाश्य ने अपने काम को प्रकट करके बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि वयम एतद् बाणम अवष्टभ्यः विधारयाम। तो बाणम शब्द का अर्थ है, पहले जो प्रजा पूछा था ना कि कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, तो इसमें प्रजा शब्द का जो अर्थ है वही यहां पर बाण शब्द का अर्थ निकलेगा। तो प्रजा शब्द का अर्थ क्या लिया था, शरीर, स्थूल शरीर, तो बान शब्द का भी अर्थ है स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर को यहां बान शब्द से क्यों कह रहे हैं? छूट जाता है इसलिए बान। तो कई एक कारण है। ऐसे संस्कृत के अनुसार जो शब्द बनते हैं ना, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो वो बनते हैं धातुओं से, कोई प्रत्यय होकर के। ये बान शब्द जो बना है इसमें धातु है वा, उसका अर्थ होता है गति और गंध। वा गति गंधन यो धातु है। सुनते हैं यहां स्वाध्याय के बाद में शनिवार शनिवार को व्याकरण का भी पाठ चलता है। अच्छा है, तो उसी से ये जो व्याकरण पढ़ने वाले वैयासिक होते हैं ना, वो भी माने जाते हैं सर्जन के तरह सर्जन। तो सर्जन भी क्या करते हैं, आपके अंगों में सर्जरी करता है ना, अलग अलग अंगों के हिस्से को निकाल करके फिर दूसरा लगाते हैं। ऐसे ये शब्दों की सर्जरी करते हैं वैयाकरण, व्याकरण पढ़ने वालों को वैयाकरण कहते हैं। तो बानम शब्द है, इसमें वा धातु है और ल्यूट प्रत्यय होता है, ल्यूट को अन होकर के वानम बनता है, उसका अर्थ निकलता है वाती यानी देशात देशांतरम गच्छति इति वानम। ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो एक देश से दूसरे देश में जाता है। अभी तक घर में था, घर से चल करके यहां आया सत्संग के लिए, यहां से थोड़ी देर बाद चला जाएगा ऑफिस। तो ये जाता आता कौन है? आत्मा की शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जाता है। तो ये स्थूल शरीर में ही आना जाना हो रहा है, सूक्ष्म शरीर में तो बिना स्थूल आश्रय के कुछ आना जाना नहीं होता, वो करता है आना जाना स्थूल शरीर। गाड़ी खाली इंजन ही इंजन हो और इंजन की बॉडी न हो तो इंजन कहीं जा आ सकता है क्या? वो बॉडी में फिट गाड़ी के जो इंजन है वही आपको पहुंचा सकता है। तो बॉडी में आप बैठ करके जाते हैं ना, ऐसे ये भी बॉडी है, इसमें बैठे हैं आप, आपको ये ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वाती गच्छति स्थानात स्थानांतरम इति वानम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं वान शब्द की, तो अर्थ निकलता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे कहा जाता है वान। आप कहोगे ये तो फिर केवल जो जंगम शरीर है, शरीर के दो प्रकार है ना, स्थावर और जंगम। तो जंगम शरीर तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे तो वान कहा जाएगा, और स्थावर शरीर पेड़ जहां उत्पन्न हुआ वहीं रहता है, वो कहा जाता है। इसलिए उसके लिए भी गंध, एक गंध अर्थ भी है ना इसका, तो वाती गंधम इति वानम, ऐसा ये करते हैं तो जो गंध फैलाता है, गंध यानी सुगंध। कहीं एक पेड़ ऐसे होते हैं चंदन आदि के, सुगंधी फैलाते कि नहीं, और कुछ दुर्गंधी होंगे तो दुर्गंधी भी फैलाते हैं। ये तो सारे शरीर ही, उनमें दोनों प्रकार होते हैं, कुछ जो जंगम शरीर हैं उनमें भी तो गंध आती है ना, देवताओं के शरीर से सुगंध आती है। और हम लोग यदि नहाए ना, खूब पसीना आता जाए और वैसा ही शरीर में सूखता जाए और सालों तक नहाए नहीं तो कोई पास में भी न बैठने दे, ऐसे दुर्गंध है। तो कुत्सितम गंधम वाती इति वानम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ है कुत्सित गंध को फैलाने वाला। दुर्गंधि को फैलाने वाला, ये भी ये शरीर है, वो सभी शरीर है। तो इसलिए वानम शब्द का अर्थ निकलेगा शरीरम, और कहीं कहीं व और ब का अभेद माना जाता है। वकार यहां तो बानम है ना, और वहां तो वानम था, वह वकार और बकार का अभेद मान करके बानम ये बना, और न और न का भी अभेद मान करके बानम बना। तो बानम का अर्थ है स्थूल शरीर। तो ये जो 17 हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेन्द्रिया, मन बुद्धि और ये भूत सूक्ष्म, 5 भूत, ये क्या करते हैं कि शरीर धारण में थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं। शरीर स्थिति जिससे बनी रहे उसके लिए आंख, जब शरीर चलता है तो रास्ते में किधर से गाड़ी आ रही है, उसकी क्या गति है, उसको देख करके निर्धारण कराता है मन में, और फिर पार कराता है रास्ता। तो शरीर की रक्षा करता, नहीं तो पास में गाड़ी आ रही है और द्रुत गति से आ रही है, ब्रेक लगने पर भी रुकने वाली न हो ऐसी गति से पास में है, और उसमें से भी पार करने के लिए जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा ना। इसलिए देखना, ये जो शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, शरीर के आघातक तत्व कितने दूर है, क्या है इत्यादि, तो ये व्यापार करके थोड़ी बहुत शरीर की सुरक्षा करके शरीर का विधारक चक्षुरादि इंद्रिया भी बनती है। ये सब भी उपकार करते हैं शरीर का विधारण में, लेकिन ये नहीं कि खाली यही उपकार कर रहे हैं, इनके बिना रही ना। अंधों का भी तो शरीर चलता है, जीवन चलता है, गूंगे का भी चलता है, सबका चलता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा उपकार करते हैं और ज्यादा ही बखान करते हैं, ऐसा अभिमान करते हैं कि मेरे बिना इस शरीर का तो कुछ क्षण भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा यदि मैं इसको धारण न करूं तो, ऐसा अभिमान ये करते हैं। ये यहां पर कहा गया कि ते प्रकाश्य अभिवदंती, यानी कर रहे हैं सब मिलकर के काम, और एक एक जन अभिमान कर रहा है कि मैं ही पूरे शरीर का विधारण रूप व्यापार कर रहा हूं। तो इन्हीं के साथ प्राण है, मुख्य प्राण, तो मुख्य प्राण को इनका जो ये प्रचार प्रसार में लगे हैं और अभिमान पूर्वक कह रहे हैं कि मैं ही शरीर को धारण करके रखता हूं, मैं ही शरीर को धारण करके रखता हूं, अपनी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए प्राण देख करके इनको इनके हित के लिए कहता है, चाहता है कि ये तो अभिमान के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये मुंह है, कहते हैं इस प्रकार का मोह तुम मत करो, ये शरीर को धारण करना तुम्हारा कार्य ऐसा लग रहा है जैसे गोवर्धन को उठाया तो भगवान कृष्ण ने, लेकिन कहा कि तुम लोग भी अपना कुछ सहारा नहीं दोगे तो हम लोगों के ऊपर ये पर्वत आकर के दबा देगा हमको, आप लोग भी सहारा दो। और उनमें से यदि ब्रजवासी ये कहना शुरू कर दे कि एक एक उसमें से कि मैंने ही गोवर्धन पर्वत को उठाया, मैंने ही उठाया, यदि मैं न पकड़ूं तो गोवर्धन नीचे आकर के हम सबको दबा दें, ऐसा गोवर्धन वहां ब्रजवासियों को अभिमान हो जाए कृष्ण को छोड़ करके, तो ये अभिमान उनका उनके हित का तो कारण नहीं बनेगा, कल्याण तो नहीं करेगा। ऐसे प्राण देख रहा है कि इससे तो इनका अहित ही होगा, इनके हित के उद्देश्य कहता है कि ये ऐसा मत करो करो कि अभिमान हम ही शरीर को धारण कर रहे हैं, हम ही शरीर को धारण कर रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो शरीर को धारण करके मैं रखता हूं, ये सब प्राण का संवाद आएगा तीसरी कंडिका में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।